झूठे संतुलन की घिनौनी धोखाधड़ी, पश्चिमी मीडिया की गाजा में इजराइल के नरसंहार को सफेद करने में मिलीभगत। 4 जुलाई 2025 तक गाजा में विनाश अकल्पनीय है। अनुमान है कि इजराइल के नवीनतम हमले की शुरुआत से 270,000 से 378,000 तक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह संख्या आधिकारिक तौर पर दर्ज 57,000 प्रत्यक्ष मौतों को बहुत पीछे छोड़ देती है, जो स्वयं मलबे में दबे शवों और दुर्गम क्षेत्रों तक सीमित हैं। फिर भी इस अभूतपूर्व सामूहिक हत्या के सामने मुख्यधारा के पश्चिमी मीडिया संतुलन और निष्पक्षता की आड़ में एक घोर विकृत कथानक प्रस्तुत करना जारी रखते हैं। यह तथाकथित तटस्थता मिलीभगत से कम नहीं है। एक पर मानव हथियारों से लैस कब्जा करने वाले राज्य और एक घेराबंदी और बम्बारी के तहत बिना राज्य वाली आबादी को समान महत्व देकर मीडिया संगठन नरसंहारपूर्ण हिंसा को सफेद करने में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। दबाई गई सांख्यिकी और मृत्यु संख्या की छिपाने की कोशिश। संख्याएं एक ऐसी कहानी कहती हैं जिसका सामना करने से मीडिया इनकार करता है। जनवरी 2025 में द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन ने 2024 के मध्य तक 64,000 से अधिक प्रत्यक्ष मौतों का अनुमान लगाया, जिसमें नोट किया गया कि यह आंकड़ा 41% कम करके आंका गया था। बाद के अनुमानों ने भूखमरी, बीमारी और बुनियादी ढांचे के पतन से होने वाली अप्रत्यक्ष मौतों को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2024 तक कुल मृत्यु संख्या 1,86,000 तक होने की भविष्यवाणी की। तब से निरंतर बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान 270,000 से 378,000 की सीमा अनुमानित नहीं है। यह संघर्ष क्षेत्रों में अतिरिक्त मृत्यु दर के ऐतिहासिक मॉडलों पर आधारित है। फिर भी मीडिया गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के सीमित आंकड़े पर अडिग रहता है, इसे हमास द्वारा संचालित कहकर इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है, जबकि पिछले इजरायली हमलों के दौरान मंत्रालय की सटीकता के लंबे रिकॉर्ड को नजरअंदाज करता है। यह जानबूझकर कम रिपोर्टिंग आपदा के पैमाने को कमजोर करती है और वैश्विक आक्रोश को विलंबित करती है। अत्याचार प्रचार और खारिज की गई भयावह कहानियां। पत्रकारिता का अपराध केवल चूक नहीं है, बल्कि विकृति भी है। युद्ध की शुरुआत में वैश्विक सुर्खियों ने भयावह और असत्यापित कहानियों को दोहराया। 40 सिर कटे हुए शिशु, एक शिशु जिसे ओवन में पकाया गया, एक भ्रूण जो अपनी माँ के गर्भ से काटा गया। ये दावे जो राजनेताओं द्वारा व्यापक रूप से फैलाए गए और सीएनएन और स्काई न्यूज जैसे मीडिया आउटलेट्स द्वारा बिना आलोचनात्मक जांच के बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए, इजराइल की जवाबी कार्रवाई के लिए भावनात्मक बहाने के रूप में काम आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वयं एक सार्वजनिक भाषण में सिर काटने के दावे को दोहराया। इनमें से किसी भी आरोप को सिद्ध करने वाला कोई सबूत कभी नहीं मिला। यहां तक कि इजरायली सरकार ने बाद में स्वीकार किया कि वे इनकी पुष्टि नहीं कर सकते। फिर भी आज तक इनमें से कई आउटलेट्स ने कोई औपचारिक खंडन जारी नहीं किया है। कुछ अभी भी खारिज किए गए दावों का उल्लेख करते हैं जैसे कि वे तथ्य हों। यह पत्रकारिता नहीं है, यह अत्याचार प्रचार है, सामूहिक हत्याओं को उचित ठहराने और असहमति को चुप कराने का एक तंत्र। जब असत्यापित भयावह कहानियों को तत्काल बिना आलोचनात्मक जांच के प्रसारण समय दिया जाता है, जबकि प्रलेखित इजरायली युद्ध अपराधों के साथ संदेह के साथ व्यवहार किया जाता है, पूरी तरह से कम करके आंका जाता है, एक पैटर्न उभरता है, फिलिस्तीनियों का अमानवीकरण और इजरायली दंडमुक्ति की रक्षा। संस्थागत पक्षपात और मीडिया की मिलीभगत। इस पक्षपात की प्रणालीगत प्रकृति स्पष्ट है। मध्य पूर्व संपादक रेफी बर्ग के नेतृत्व में बीबीसी ने गाजा हमले के तहत डॉक्टर जैसे खोजी सामग्री को दबा दिया, जिसे केवल चैनल 4 जैसे अधिक साहसी आउटलेट्स ने बचाया। सीएनएन ने इजरायली दावों को तब भी प्रसारित करना जारी रखा जब वे खारिज हो चुके थे, यहां तक कि आंतरिक आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए, जैसा कि अल जजीरा के वृत्तचित्र फेलिंग गाजा में विस्तार से बताया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने ऑरवेलियन संपादकीय नीतियां लागू की, जिनमें नरसंहार शब्द का उपयोग प्रतिबंधित था, भले ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीका की इजराइल के खिलाफ नरसंहार के मामले को विश्वसनीय पाया। यूरोपीय मीडिया समूह जैसे एक्सल स्प्रिंगर के पास अवैध बस्तियों की अर्थव्यवस्था में वित्तीय हिस्सेदारी है, जो सीधे विस्थापन से लाभ उठाते हैं और पोलिटिको जैसे सहायक कंपनियों के माध्यम से कवरेज को आकार देते हैं। गवाहों को चुप कराना पत्रकारिता के खिलाफ युद्ध। मीडिया रिक्तता में इजाफा करते हुए इजराइल ने अपनी आक्रामकता की शुरुआत से सभी विदेशी पत्रकारों को गाजा में प्रवेश करने से रोक दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एकमात्र प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग घेरे गए फिलिस्तीनी पत्रकारों से आए। इन स्थानीय पत्रकारों ने अपनी कवरेज के लिए अंतिम कीमत चुकाई है, लगभग 250 इजरायली बलों द्वारा मारे गए हैं, जिसमें वे भी शामिल हैं जो स्पष्ट रूप से प्रेस के रूप में पहचाने गए थे। गवाहों को खत्म करके और स्वतंत्र आवाजों को चुप करके इजराइल यह सुनिश्चित करता है कि उसका घटनाओं का संस्करण वैश्विक कथानक पर हावी हो। झूठा संतुलन भटकाव का एक उपकरण। इन मामलों को जोड़ने वाली चीज केवल पक्षपात नहीं है, बल्कि जानबूझकर रचित संरचना है। झूठा संतुलन एक तटस्थ ढांचा नहीं है, यह भटकाव का एक उपकरण है। जिस तरह जलवायु परिवर्तन के इनकार करने वालों को एक समय जलवायु वैज्ञानिकों के साथ प्रस्तुत किया गया था और टीकाकरण विरोधियों को चिकित्सा सहमति के खिलाफ मंच दिए गए थे, उसी तरह गाजा में नरसंहार को कब्जा करने वाले उपजाए गए लोगों के बीच झूठी समानता के तहत दफन किया जा रहा है। लेकिन यह कोई बहस नहीं है। यह एकतरफा नरसंहार है जिसमें 1/4 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी मरे हैं, जबकि इजरायली पक्ष में इस संख्या का एक अंश है। मिलीभगत की कीमत। इस धोखे के परिणाम विशाल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई में देरी करता है। यह अपराधियों को बिना सजा के कार्य करने की अनुमति देता है। यह एक पूरे घेरे गए लोगों की पीड़ा को मिटा देता है। यह भविष्य के अपराधों को प्रोत्साहित करता है। पश्चिमी मीडिया को अपनी तटस्थता की ढोंग छोड़ देनी चाहिए, गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों की वास्तविकता का सामना करना चाहिए और उन निर्मित झूठों के रिकॉर्ड को ठीक करना चाहिए जिन्हें उन्होंने फैलाने में मदद की। गाजा का खून इससे कम की मांग नहीं करता। चुप रहना या इससे भी बदतर संतुलित रहना नरसंहार के पक्ष में खड़े होने का मतलब है।